सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं साहुवज्रायिरे अरहन्ते वन्दिऊणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीर सैन्याचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यह जो आठवीं पुस्तक चल रही है, तृतीय खंड, और उसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। यहाँ बंध करने वाले जीव कौन कौन से हैं, कहाँ बंध की विच्छित्ति होती है, आदि बातें हम देखने वाले हैं। इसमें हम पृष्ठ संख्या 14 पर आ गए हैं। देखो यहाँ सूत्र 6 नंबर का सूत्र हमने 13 नंबर के पृष्ठ पर देखा था कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक के जीव बंधक है, शेष अबंधक है, ऐसी बात उसमें आई थी। तो उसमें कषाय से होने वाले बंध की सांप्रायिक आश्रय जिसको कहते हैं, उससे होने वाला बंध, बाद में जो साता वेदनीय का प्रदेश बंध होता है उसकी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं बनता है। उसको छोड़कर उसके अलावा अन्य सारी जो प्रकृतियाँ हैं दसवें गुणस्थान तक बनती है, उसकी अपेक्षा से यहाँ बात है। उसमें बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं कि कौन सी प्रकृतियों का बंध पहले रुकता है बाद में उदय रुकता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय पहले रुकता है और बाद में बंध रुकता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध और उदय एक साथ ही विच्छित्ति होती है, वो भी बात हमने देखी थी। अब कितने ही प्रकृतियां हैं वो अपने ही प्रकृति का उदय होते हुए बनती है, और कितनी प्रकृतियां अपने उदय होने पर नहीं बनती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें में है और बंध 8वें तक है, 4थे से लेकर 8वें तक, यानी तीर्थंकर प्रकृति के उदय में तीर्थंकर प्रकृति कभी नहीं बंधेगी, तो वो परो यानी वो तो स्वोदय से नहीं ही बंधने वाली है। आहारक अंगोपांग है वो 7वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में बनती है, और उसका उदय 6ठे में, यानी उसका अपना उदय होने पर वो कभी नहीं बनती। ऐसी हमने कल लिस्ट देखी थी। देखो यहाँ अपने ही उदय में बंधने वाली को कहते हैं स्वोदयी, स्वोदय बंध वाली, और समझो गति नाम कर्म है, उसके 5 अलग अलग जाति, एक केंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरिंद्रीय, तो अन्य के उदय में वो बनती है तो उसको परोदयी कहते हैं। देखो हम फिर इसको देखते हैं, इसी पृष्ठ पर है 14वें में, चौदहवें पृष्ठ पर ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें नीचे से 6ठी लाइन, क्या स्वोदय से क्या परोदय से, या क्या स्वोदय परोदय से इनका बंध होता है, इस प्रश्न का उत्तर अभी हम ढूंढेंगे। स्वोदय किसे कहना, परोदय और स्वोदय परोदय किसको कहना, इस पृच्छा का आश्रय कर उत्तर कहते। अब यहाँ पहले इस संबंध से स्वोदय परोदय और स्वोदय परोदय से बंधने वाली प्रकृतियों का निरूपण करते हैं। ये जो अलग अलग प्रकृति है, जो स्वोदय से ही बंधेगी, जो परोदय से ही बंधेगी, जो दोनों में भी बंधेगी, ऐसी बातें, वह इस प्रकार है। अब पहली जो 11 प्रकृतियां हैं वो परोदय से ही बनती है, उसका अपना उदय रहते हुए वो कभी नहीं बंधेगी। जैसे यहाँ पहले ही नारकायु कहा है, तो नारकायु का बंध किससे होता है, मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। तो मनुष्य और तिर्यंचों को कौन से आयु का उदय चल रहा है? तिर्यंचायु, ये मनुष्य आयु और तिर्यंचायु का, यानी नारकायु का उदय होते हुए नारकायु कभी नहीं बंधेगी। अपनी भाषा में नारकी जीवों को नरकायु नहीं बंधेगी। तो एक नारकायु हुआ। देवायु का भी ऐसा ही नियम है, देवायु का उदय चल रहा है यानी देव जीव है, उन्हें अगला भव देवा यानी देव का नहीं होगा, वो देवायु नहीं बांधेंगे, वे भी मनुष्यायु तिर्यंचायु बांधेंगे। और देवायु कौन बांधेंगे? मनुष्यायु तिर्यंचायु वाले देवायु बांधेंगे। तो इसको कहते हैं ये परोदय से ही बनती है। नरक गति देव गति, जैसे आयु के संबंध में नियम है वैसे गति नाम कर्म के भी संग, और आगे चलकर गत्यानुपूर्वी भी उस नाम की कहेंगे। फिर वैक्रेक शरीर, वैक्रेक शरीर अंगोपांग, क्योंकि जब देव गति बनती है तो उसके साथ वैक्रेक शरीर और वैक्रेक अंगोपांग का बंध होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मनुष्यायु बांध रहा है, मनुष्य गति बांध रहा है और वैक्रेक शरीर अंगोपांग बांधना है, ऐसा नहीं होता। हमने पहले देखा था ना नाम कर्म के जो बंधे वाले, उसका पैकेज होता है देवगति बांधने वाले के, उसके पूरक ऐसी प्रकृतियां बंधी गई। तो वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, यानी आहारक शरीर के भी अपने उदय होते हुए नहीं बंधेगी, अभी हमने देखा था उसको, उसी के अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग भी और आहारक शरीर अंगोपांग भी, नरक गत्यानुपूर्वी देव गत्यानुपूर्वी। और तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति के उदय हो रहते हुए, वो तो 13वें गुणस्थान में होता है, 13वें 14वें में उसका उदय है, और वहाँ तो कुछ तीर्थंकर प्रकृति का बंध है ही नहीं है। तो ये 11 प्रकृतियाँ परोदय से ही बनती है, उसके लिए हमने गाथा भी पढ़ी थी और उसका अर्थ भी देखा था, यानी उन्हीं को फिर रिपीट किया गाथा के रूप में, इन्हीं प्रकृतियों के नाम दोबारा बताए हैं। हाँ कन्फर्म। अब यहाँ आगे हम पढ़ने जा रहे थे और रुके थे वहीं पर, अब यहाँ 27 प्रकृतियां बताने वाले हैं और वो सोदय से बनती है ऐसा कहेंगे, अपने उदय के होते हुए बंधेगी, यानी इनका बंध होते समय इनका उदय भी चल रहा है। वो कौन कौन सी है? 5 ज्ञानावरणीय, यानी ज्ञानावरणी का उदय भी चलता है और इनका बंध होता रहता है, क्योंकि उदय तो है 12वें तक और बंध होता है 10वें तक, यानी 10वें में इनका उदय चल रहा है तब इनका बंध भी है। 4 दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तेजस और कारमान शरीर, क्योंकि ये बंध 8वें तक है और उदय इनका 13वें तक है, यानी 13वें में उसकी विच्छेद्य होती है। वर्णाधिक 4, इसका भी उदय 13वें तक है और बंध 8वें तक है, यानी जब बंध होता है तो उनका उदय चलता है रहता है। अगुरुक लघुक, वो क आगे लिखना चाहिए, हम अगुरु लघु कहें तो भी चलेगा, परंतु यहाँ क लगाते हैं तो अगुरुक लघुक। ये अगुरु लघु का भी बंध कहाँ तक है मालूम है? 8वें तक बंध है और उदय है 13वें तक। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, निर्माण, इनका भी उदय 13वें तक है। 5 अंतराय, ये 27 प्रकृतियां स्वोदय से बनती है, जब उनका बंध चलता है तो उनकी प्रकृतियों का उदय भी चल रहा है, तो अपने उदय में बंधने वाली ये प्रकृतियां हैं। जैसे अभी हमने जो आहारक तीर्थंकर वगैरह देखी थी, या नरकायु देवायु वगैरह वगैरह, तो वो अपने उदय में नहीं बनती है, अभी जो देखिए वो स्वोदय में बंधती है। अब आगे चलकर ये जो बताने वाले बड़ी लिस्ट है अभी, यहाँ 82 प्रकृतियां स्वोदय परोदय दोनों प्रकार से बनती हैं, वो कौन सी है उसको अभी हम देखने जा रहे हैं। 5 दर्शनावरणीय, वहां 4 छोड़ी थी, अभी यहाँ 5 कौन सी होनी चाहिए? निद्रा संबंधी 5 निद्रा, यानी परोदय से बनती है, परोदय ने कौन सी? जागृत अवस्था। अभी निद्रा के उदय में भी निद्रा का बंध होगा और जागृत अवस्था चल रही है, यानी अन्य प्रकृतियों का भी उदय, वहां भी इसका बंध होगा। तो 5 दर्शनावरणीय, यानी ये पांच निद्रा समझना इसमें, क्योंकि उन्होंने केवल यहाँ संख्या लिखी है। दो वेदनीय, ये कॉमा कॉमा लगा ना यहाँ से, पांच दर्शनावरणी के बाद कॉमा, दो वेदनीय के बाद कॉमा। देखो स्वोदय और परोदय का अर्थ क्या होता है, असाता का उदय चल रहा है तो साता का भी बंद हो सकता है, यानी साता का बंद असाता का उदय में भी हो सकता है, साता के उदय में भी हो सकता है, यानी वो अपनी उसके लिए स्व कौन है, साता के लिए स्व है साता, और साता के लिए पर है असाता, तो ये स्वोदय में भी बंधेगी परोदय में भी बंधेगी। असाता का बंध किसको होगा, जिसका साता का उदय हो उसके भी हो सकता है, जिसके असाता का उदय उसको भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं स्वोदय परोदय। सोलह कषाय, कौन से सोलह कषाय, हाँ अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ वगैरह वगैरह ये सब, तो उसमें स्वोदय और परोदय कैसे है। देखो उसमें स्वोदय परोदय का अर्थ ऐसा होता है, उदय चल रहा है क्रोध का, तब क्रोध का बंद होगा और मान माया लोभ का भी बंद होगा, यानी क्रोध के उदय में मान भी बंद रहा है, वैसे मान माया के उदय में क्रोध भी बनता है, ये परोदय से भी बनता है और स्वोदय से भी बनता है, ये स्वोदय परोदय से बंधने वाली है, हर एक में लगाना उसका। नौ नौ कषाय, इसमें भी अभी हमने देखा था ना, वेद का किसी एक वेद का उदय चल रहा हो और बंद किसी अन्य का भी हो सकता है, पुरुष वेद के उदय में पुरुष वेद भी बंधेगा, जैसे हमने देखा था स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय तो नवे गुण स्थान तक है और बंद तो वहाँ पुरुष वेद का चलता है, तो अन्य वेद के उदय में अन्य वेद बनता है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई नपुंसक वेदी है उसका नपुंसक वेदी बंद रहा है पहले गुणस्थान वाले को, तो स्वोदय से भी बनता है परोदय से भी बनता है। ये नौ नौ कषाय देखे ना हमने, ऐसे अन्य भी हास्य रति अरति उसके संबंध में भी समझना। तिर्यक आयु मनुष्यायु, यानी तिर्यक आयु के रहते हुए तिर्यक आयु फिर दोबारा बांध सकता है ना, देवायु नरकायु के लिए हमने नियम देखा था कि उसके उदय में वही स्वोदय में वो नहीं बंधेगी, तो यहाँ ये स्वोदय में भी बंधेगी परोदय में भी बंधेगी, तिर्यंच आयु का उदय होते हुए भी तिर्यंच आयु बंधेगी, अन्य यानी देवायु नारकायु मनुष्यायु के उदय होते हुए भी तिर्यंच आयु बन सकते हैं, तो दोनों के उदय में बंधेगी, मनुष्य के लिए भी मनुष्यायु के लिए भी यही नियम है, जो आयु के संबंध में वो गति और गत्यानुपूर्वी पर भी घटित होगा, यहाँ वो क्रम अलग है इसलिए कौन कौन सी आएगी इसमें वो पहले हम सोच लेते हैं। वैसे तिर्यक गति मनुष्य गति, अब ये जाति संबंधी बता रहे, एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनद्रीय चतुरेंद्रीय और पंचेंद्रीय जाति, किसी भी जाति का उदय क्यों नहीं हो, ये अन्य जाति का बंध हो सकता है उसको, अपने जाति के उदय में वही जाति बंधेगी या अन्य जाति के उदय में भी हो सकता है, जैसे किसी के पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय जाति का उदय चल रहा है, तो मिथ्यात्व अवस्था में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी जाति बन सकती है, वैसे कोई एकेंद्रिय जीव है उसको भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जाति तक किसी भी जाति का बंध हो सकता है, तो ये स्वोदय से भी बंधेगी और परोदय से भी बंधेगी। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय मनुष्य और तिर्यंचों को है और उन्हें दोबारा औदारिक शरीर नाम कर्म बन सकता है, जब वे मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं या तिर्यंच गति का बंध कर रहे हैं तो उसके साथ औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग का बंध होगा ही। छह संस्थान, किसी भी संस्थान के उदय में अन्य संस्थान का बंध हो सकता है, औदारिक शरीर अंगोपांग ये तो औदारिक शरीर के साथ ही इसका बंध होता है तो इसको भी समझना। छह सहनन, इसमें भी वैसा ही नाम है, किसी सहनन का उदय हो, हाँ ऐसा कभी होगा कि सहनन का उदय ही नहीं है और सहनन बनता है, हाँ देव में और नारकियों में उनके सहनन है ही नहीं है और उनको यहाँ बंद तो होगा जब, क्योंकि मनुष्य गति बांधते हैं तिर्यंच गति बांधते हैं या तिर्यंचाई बांधते तो इसका सहनन का बंद होगा। तिर्यक गति प्रायज्ञानपूर्वी, मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, जैसे गति नाम कर्म है वैसे प्रायज्ञानपूर्वी उसके साथ ही बनता है। उपघात परघात ये तो नहीं आया बराबर, उपघात के बाद कॉमा भी लगाना। ये उपघात और परघात ये कौन सी बात चल रही है, उपघात के उदय में या उपघात के नहीं उदय हो तो भी ये बंधेगी, परघात का उदय हो या नहीं हो तभी बंधेगी, परघात के उदय में भी बंधेगी नहीं उदय हो तो भी बंधेगी। हमने देखा ना शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात का उदय शुरू होता है, परंतु उसके पहले ही ये परघात वगैरह बंध उसका होगा, परघात का उदय न भी हो तो भी उसका बंध तो होगा। अपर्याप्त अवस्था में उसका बंध होगा, ख्याल है ना, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त जो वो भी परघात नाम कर्म को बांध सकते कि नहीं, बांधने की बात चल रही है, कौन से उदय में कौन सी बनती है उसकी बात है। यहाँ उच्छ्वास नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय कौन से जीवों को चलता है, हाँ पर्याप्त जीवों को, सभी जीवों को नहीं पर्याप्तों को, लब्धि अपर्याप्तों को नहीं है। तो जिसको उच्छ्वास का उदय नहीं है ऐसे जीवों को उच्छ्वास नाम कर्म बांध सकता है कि नहीं सकता, हाँ तो वो पर्याप्त नाम कर्म बांधेंगे तो उसके साथ उच्छ्वास वाला नाम कर्म भी बांधेंगे, तो ये परोदय से भी बंधेगी और स्वोदय से भी बंधेगी। आतप उद्योत, आतप का उदय रहते हुए आतप नाम कर्म बांध सकता है दोबारा। आतप का उदय किसको होता है पता है, हाँ एक इंद्रिय, कौन से एक इंद्रिय को, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, एक कंडीशन है उसमें, वो पर्याप्त होने चाहिए, अपर्याप्त जीवों को वो नहीं होते और ना ही साधारण जीवों के होते, ना ही सूक्ष्मों को होता है, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त के साथ आतप का उदय नहीं है, पर्याप्त होने चाहिए, बादर होने चाहिए, एक इंद्रिय तो हमने बता दिए, क्योंकि ये आतप नाम कर्म भी शुभ प्रकृति है, ये सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ उसका उदय नहीं होता है, यानी लब्धि अपर्याप्तकों में इसका उदय नहीं पाया जाएगा। पर्याप्तकों में भी उदय कब होता है हमने पहले देखा था, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर आतप का उदय शुरू हो जाता है, तो ये आतप का उदय हो तो भी आतप बन सकता है, आतप का उदय नहीं है तो भी बंधेगा। जैसे किसी देव ने जो एक इंद्रिय का बंध करते हैं ना कभी, भवनत्री या सौधर्म ईशान वाले, उनकी आयु शेष रहती 6 महीने, तो जानते हैं अभी यहाँ का काल पूरा होने को आया है तो बहुत विलाप करते हैं, कुछ संकलेश परिणाम, तो एक इंद्रिय संबंधी भी बंध करते हैं, तो किसी किसी को आतप का भी बंध होगा, आतप का उदय तो है ही नहीं उनके, क्या है देवों में, सूर्य विमान के पृथ्वी कायिकों को होगा परंतु वहां रहने वाले देवों को नहीं है, क्योंकि ये तो एक इंद्रियों में ही इसका उदय रहता है, परंतु वे बंध तो उसका कर सकते हैं। अब उद्योत की बारी, उद्योत का उदय किसके होता है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक पर्याप्तों को ये उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है, यहां भी पर्याप्तों को रहता है, तो उसका बंध भी उनके होगा या जिसके नहीं है उदय उसके भी होगा, जो देव और नारकीय मनुष्य है जो तिरेंच गति वगैरह वगैरह उसकी प्रकृतियां बांध रही है उसके साथ उद्योत बनता है तो उनके तो उद्योत का उदय नहीं होते हुए भी उद्योत का बंध होता है। कितने ही तिरेंचों को उद्योत का बंध उदय होते हुए भी और आगामी भव की भी उद्योत प्रकृति बंधेगी उनकी, इसलिए स्वोदय और परोदय दोनों से बनती है। दो विहायो गति, कौन सी दो होती, प्रशस्त और अप्रशस्त, एक किसी एक का उदय होने पर दूसरी बन सकती है, वो अपनी भी वही की वही भी बन सकती है। त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण शरीर, ये भी अपना उदय हो यानी उसी प्रकृति का उदय हो या अन्य प्रकृति का। ये स्थावरों को भी त्रस नाम कर्म बन सकता है, त्रसों को त्रस बन सकता है, त्रसों को स्थावर बन सकता है, यानी स्वोदय और परोदय में बनते हैं। ये सबके लिए समझना, चार की जोड़ी है ना, तो हमने एक साथ उसको पढ़ लिया। सुभग और दुर्भग, उदय एक का हो या उसी का हो तो वो प्रकृति बन सकती है, अन्य भी बन सकती है। सुस्वर दुस्वर में भी ऐसा ही समझना, आदेय अनादेय चाहिए, अनोदय हुआ अनादेय। यश कीर्ति अयश कीर्ति, हमने देखा था एक इंद्रियों में भी यश कीर्ति का उदय हो सकता है और अयश कीर्ति का भी उदय कहाँ से कहाँ तक रहता है, कौन से गुणस्थान तक रहता है? हाँ, अयश कीर्ति चौथे गुणस्थान तक। तो चौथे गुणस्थान ऐसा हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि और अयश कीर्ति का उदय हो रहा है, उसको बंद कौन सा चल रहा है उसका, यश कीर्ति का। हाँ, हो सकता है, या अयश भी बांधे क्योंकि छठे तक अयश कीर्ति का बंद हो सकता है। नीच गोत्र और उच्च गोत्र, नीच गोत्र के उदय होते हुए नीच गोत्र भी बन सकता है, उच्च गोत्र भी बन सकता है, यानी वो स्वोदय में भी बनेगी परोदय में भी बनेगी, ऐसे ही उच्च गोत्र के संबंध में। ये ब्यासी प्रकृतियाँ स्वोदय परोदय दोनों प्रकार से बनती हैं। यहाँ उपसंहार गाथाएं, इसके लिए वो गाथाओं को उद्धृत करते हैं गोमर सार में से। नानंतराय है ना, ये नानंतराय है, वो जरा अस्पष्ट है। नानंतराय दंसन करना उसको, थिरादि चौ तेज कम्म देहायिम निमिणम, यानी निमित्त अगुरु व लहु वर्ण चौकम च मिच्छत्तम। अभी दिख रहा है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। नानंतराय दंसन थिरादि चौ तेज कम्म देहायिम निमिणम अगुरु व लहु वर्ण चौकम च मिच्छत्तम सत्तावीसेदाओ बच्छन्ति सोदयेन पयडियो सोदय परोदयेन वि बज्जन्त वसेसियाओ दू। इसका अर्थ किया है नीचे 12 और 13 का साथ में, पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, दर्शनावरण चार, स्थिर आदि चार, स्थिर अस्थिर शुभ शुभ, तेजस और कारमान शरीर, निर्माण, अगरुक लघुक वर्णाधिक चार और मिथ्यात्व, ये 27 प्रकृतियां तो स्वोदय से बनती है और शेष प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बनती हैं। देखो पहले हमने 11 मात्र परोदय से बनने वाली देखी और 27 है वो स्वोदय परोदय दोनों से बनने वाली है, नहीं स्वोदय से, 27 है वो स्वोदय से बनने वाली है, 27 और 11। हाँ, और ये जो बाकी जो है 82 वो स्वोदय और परोदय दोनों से बनती है। बिना कुछ ख्याल में आया? देखिए यहाँ कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है उसकी बात चल रही है। अभी आप थोड़ा ये प्रकृति कौन सी का उदय कहाँ मिटता है ये बात हमने यहाँ पहले देखा था। देखिए ये बाद में भी आप देख सकते हैं इसको, घर जाकर थोड़ा क्लियर होगा। वैसे है तो बहुत आसान, उदय की विच्छित्ति हमने देखी थी, ये पेज नंबर है 9। विच्छित्ति का अर्थ तो आप जानते हैं ना, विच्छित्ति होने भी मिट जाना, वो उदय हो रहा है उसी गुणस्थान तक ही रहेगा, आगे के गुणस्थानों में उसका उदय नहीं रहता, उसको हम कहेंगे उदय की विच्छित्ति। जैसे मिथ्यात्व का उदय अकेले पहले गुणस्थान में ही होता है, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं होता, तो हम कहेंगे उसके उदय की विच्छित्ति पहले में भी हो गई। आपने बंध की विच्छित्ति का नाम पहले सुना था, पंचलब्धि के प्रकरण में भी हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रकृतियाँ कहाँ बनती है। जैसे मिथ्यात्व में से कोई जो सम्यक तो प्राप्त करता है तो पहले गुणस्थान संबंधी 16 और दूसरे संबंधी 25 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है। उनका बंध आगे के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं बंध की विच्छित्ति। अब यहाँ बताइए उदय की विच्छित्ति, कौन से गुणस्थान तक कौन सी प्रकृतियों का उदय है, आगे नहीं है, उसको कहेंगे उदय की विच्छित्ति। अभी प्रत्येक प्रकृति के बारे में बंध कहाँ तक है और उदय कहाँ तक है अलग अलग है, एक ही रूल सबके लिए नहीं है। वो तो पहले उदय रुकता है कि पहले बंध रुकता है कि दोनों साथ में रुकता है, उसकी तो हमने चर्चा कर दी। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्वोदय और परोदय से बंधने वाले की बात है। जिस प्रकृति, अब आप किसी भी प्रकृति का नाम लो आपको जो चाहिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ पीना, आप कोई भी एक प्रकृति का नाम लेना, 148 में से किसी भी एक प्रकृति का नाम लो, आप चॉइस इज योर्स। नहीं नहीं कुछ भी, हम उसकी चर्चा करेंगे। हाँ मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व का बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है, पहले में, उदय की विच्छित्ति पहले में, यानी दोनों की साथ में होती है। अब स्वोदय परोदय की बात करेंगे। मिथ्यात्व का उदय होते हुए ही मिथ्यात्व बनता है, यानी वो स्वोदय में बंधने वाली है, स्वोदय से बनती है, बराबर। हाँ। अभी दूसरी कोई, आप मंजुबेन आप कोई अन्य प्रकृति बताओ। हाँ तीर्थंकर प्रकृति। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक है, तो चौथे से लेकर आठवें तक है, यानी उसके बंध की विच्छित्ति आठवें में होती है। और उसका उदय कब शुरू होता है, तो तेरहवें में होता है, और तेरहवें और चौदहवें में होता है उदय। क्या तीर्थंकर प्रकृति के उदय में तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कभी? कभी नहीं बंधेगी, यानी वो तो स्वोदय में बंधेगी ही नहीं, तो उसको कहेंगे परोदय से बंधने वाली। अभी हम नारकायु वगैरह की बात की, नारकायु का उदय होते हुए नारकायु कभी नहीं बंधेगी। हाँ तो वो तिर्यंचायु या मनुष्यायु के उदय होते हुए बंधेगी, तो उसको कहते हैं परोदय से बंध रही है ना। ये स्वोदय परोदय की चर्चा चल रही है यहाँ पर। और कुछ प्रकृति ऐसे स्वोदय में भी बनती है, परोदय में भी बनती है। जैसे अभी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है, तो जिसको पंचेंद्रिय जो जीव है उसको भी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म बन सकता है, यानी उसके उदय में भी बंधेगा। या परोदय यानी एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय, ऐसे एकेंद्रीय जीवों को भी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म बन सकता है, तो वो स्वोदय में भी बनती है परोदय में भी बनती, इसकी अभी हमने चर्चा की। अभी उसकी लिस्ट है वो अपने याद में नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, वो क्यों उसको स्वोदय और परोदय कहा है ये बात ख्याल में लेना जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखो 15 पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ। यहाँ ज्ञानावरण व अंतराय की 10 प्रकृतियां तथा दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां, इनको बांधने वाले सब गुणस्थान स्वोदय से ही बांधते हैं। क्या कहना चाहते हैं, 5 ज्ञानावरण का बंध कहाँ से कहाँ तक है, तो मिथ्यात्व से लेकर 10वें के अंत तक। अंतराय की बारे में भी यही बात है। दर्शनावरण के बारे में क्या रूल है, ये 4 दर्शनावरण को लिया, कौन से 4 को लिया है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, इनका बंध कहाँ तक है, 10वें के अंत तक है, बराबर है ना। छोड़े कौन से, 5 निद्रा छोड़ी, उसमें से स्त्यान ग्रुद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला का बंध दूसरे गुणस्थान तक है, और निद्रा और प्रचला का बंध 8वें के पहले भाग तक है, यानी वहां उसकी विच्छित्ति होती है, बराबर है। अब यहाँ ये जो यहाँ ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण, इनको बांधने वाले जो जीव है तो स्वोदय से ही बनती है, वहां उनका उदय भी चल रहा है, इसलिए इनको स्वोदय कहा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक इनका निरंतर उदय रहता है। ये जो हमने 14 देखी, इनका उदय तो निरंतर रहता है, ये कभी हो जाए कभी नहीं हुआ ऐसी बात नहीं। जैसे 5 निद्रा का उदय तो कभी कभी होगा, जागृत अवस्था में निद्रा कर्म का उदय नहीं है। निद्रा कर्म का उदय है और यहाँ अवस्था भी जीव की निद्रा वाली है, परंतु जागृत अवस्था में निद्रा नाम कर्म का उदय, सॉरी दर्शनावरण का उदय नहीं है, अन्य 4 का उदय चल रहा है। यानी उसके उदय में तो बनती है वो, यानी ये जो 10वें के अंत तक बन रही है तो वहां उनका उदय भी चल रहा है, यानी वो स्वोदय में ही बन रही है। पिनांग क्या लाता है, नहीं आया तो पूछना फिर से। देखो अब हम इसमें से ज्ञानावरण की बात लेते हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इनका बंद किस किस को हो रहा है? सब जीवों को हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? पहले गुणस्थान से लेकर 10वें के अंत समय तक, बाद में उसका बंद मिट जाता है। तो 10वें तक इनका बंद है, तो इनका उदय 10वें तक है कि नहीं है? ज्ञानावरण का उदय तो 12वें के अंत तक है, यानी 10वें तक जहाँ इनका बंद है वहाँ 5ों ही ज्ञानावरण का उदय भी पाया जाता है। इसलिए इसको कहा, क्या कहा, वो स्वोदय में ही बनती है। अंतराय के बारे में भी ऐसा ही है, अंतराय का बंद है 10वें के अंत तक 5ों का ही, और 5ों का ही उदय है 12वें के अंत तक। वहाँ कोई ऑप्शनल उदय नहीं है, 5ों का ही उदय है, यानी वो बनती है अपने उदय में। फिर इसको देखते, देखो यहाँ ज्ञानावरण व अंतराय की 10 प्रकृतियाँ तथा दर्शनावरण की 4 प्रकृतियाँ, इनको बांधने वाले सब गुणस्थान स्वोदय से ही बांधते हैं। गुणस्थान बांधते हैं वो गुणस्थान वाले जीव, इन प्रकृतियों का उदय वहाँ चल ही रहा है और इनके उदय चलते हुए उनका बंद भी कर रहे हैं, उसको कहते हैं स्वोदय से बांधते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, उसका कारण भी बताया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने पहले गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक यानी 12वें तक इनका निरंतर उदय रहता है। उसमें उदय में कोई बीच में अंतर नहीं है, इसको कहते हैं निरंतर उदय। अथवा स्वोदय से बंधने वाले प्रकृतियों के भीतर इनका पाप है। पादादो वा बज्जमान पैडीनम अभ्यंतरे पादादो वा, यानी उसको हमने उसके भीतर इनको गिना था। अभी हमने जो 27 प्रकृतियां देखी थी उसमें ये भी थी। अब यश कीर्ति प्रकृति को, हाँ देखिए, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, हाँ मति ज्ञानावरण का भी पूर्णतः उदय नहीं, ऐसी कभी अवस्था ही नहीं होती। देशघाती का उदय रहता ही है, क्योंकि ये 4ों जो है वो क्षोभम ज्ञान है, यानी हमें केवल ज्ञानावरण का तो उदय रहता ही है, केवल ज्ञान है ही नहीं है, परंतु मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो गणधर को भी, उसको भी क्षोभम चलता है। क्षोभम में देशघाती का उदय है और सर्वघाती पड़े हैं भविष्य में, वो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं, यानी उसका बिल्कुल निरावरण हो जाए मति श्रुत ज्ञान, ऐसा कभी नहीं होता। मैक्सिमम श्रुत ज्ञान हो तो भी उनके तो वो आवरण वाला ही, यानी क्षोभम वाला ही ज्ञान कहेंगे, वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे वो कोई उसका उदय नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। उदय तो रहेगा ही, देशघाती रूप से उदय रहता है, बिल्कुल अल्प आवरण है फिर भी आवरण तो रहता ही है। निरावरण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। अब ये पर्याय वाला ज्ञान भी निरावरण कहलाता है, क्योंकि पर्याय ज्ञानावरण नाम का जो आवरण वाला कर्म है उसका उदय कभी नहीं होता, बंद होता है, सत्ता में पड़ा रहता है। जब उदय रूप होने की अवस्था है तब वो अन्य रूप से उदय में आ जाता है, देशघाती हो जाता है ना वो, तो निरावरण कहा उसको। यानी इतना ज्ञान का उघाड़ तो रहेगा ही, यानी सूक्ष्म निगोद भी क्यों ना हो जावे, तो पर्याय जितना, पर्याय नाम है उस ज्ञान का, तो पर्याय ज्ञान तो रहेगा ही, कोई जीव उस ज्ञान से भी रहित हो जाए ऐसी बात कभी नहीं बनती। हाँ, लिस्ट ज्ञान।
देखो अभी आप, आपका जो कहना है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में क्या आवरण रहेगा, यानी क्या बात रहेगी, पहले में पहले हम टेक्निकली बात देखते हैं कि केवल ज्ञान आवरण जो है वो आवरण होगा तो केवल ज्ञान पैदा ही नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, ये बाकी के चार ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान है। अब क्षयोपशम ज्ञान का अर्थ क्या है, तो क्षयोपशम की परिभाषा हम समझेंगे तो अपने मन में ये जो प्रश्न है वो खड़ा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि वो 12 अंक की रचना तो करते हैं, तो अभी उनके किस प्रकार का आवरण है, तो वो जो भी आवरण होगा, आवरण तो निश्चित है क्योंकि वो ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान का ही अर्थ है वहां ज्ञानावरणी कर्मों का क्षयोपशम चल रहा है। उस पर से अभी हम पिन पॉइंट नहीं बता सकेंगे भाई इस बात का उनको नॉलेज नहीं है, जैसा अभी कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं हो। अब हम मान लेते हैं कि कोई कुंद आचार्य मुनि थे, या गणधर की बात लो, आपको गणधर को देखना है ना, तो उनको जर्मन भाषा नहीं थी, आती नहीं थी, तो अन्य जो है मोटर ड्राइविंग नहीं आता था, विमान चलाने को नहीं आता था, तो वो भी एक प्रकार का आवरण हो गया ना, यानी उस बात का ज्ञान नहीं था, चलाना नहीं आता था, इन द सेंस ये भी हो सकता है ना। तो उनके तो अलौकिक ज्ञान तो बहुत ही बढ़िया था, लौकिक ज्ञान में कोई खामी थी, जैसा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता है लेकिन मिथ्यात्व में तो पूरा पूरा भरा रहता है, ऐसा है ना, इस तरह से हम ले सकते हैं। वो तो हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि कल ही आपने बताया था केवल ज्ञानी और जो सम्यक दृष्टि, ऐसा जो श्रुत ज्ञानी है, तो इन ज्ञान, इन दोनों के ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष इतना ही भेद है, वो तो पूरे लोकालोक को जानते हैं और हर समय में तीन काल के और तीन लोक के सारे पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं। तो ये तो भाई बात तो ऐसी है कि ये लौकिक बातों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, वह तो अलौकिक जो बात है ख्याल में, वो जो छह द्रव्य हैं वगैरह वगैरह जो हम शास्त्र में पढ़ते उनके बारे में उनका ज्ञान परोक्ष रूप से निश्चित है ख्याल में। अब वो सबको प्रत्यक्ष जान रहे, इतना इनके नहीं जान रहे। ये अभी आप भी तो जानते हैं कि नहीं, प्रत्येक द्रव्य का निरंतर परिणमन अपने से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, केवल क्या जानते हैं, वही तो जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं, और उन्होंने जानकर हमें बताया और आगम के माध्यम से हमने विश्व में छह द्रव्य जाति अपेक्षा, केवली ने कितने जाने, 6.25 जाने के, 6.5। अब जो सम्यक दृष्टि, हम तो सिर्फ ज्ञान में आया है, श्रद्धा में नहीं आया है, लेकिन जो मुनि है उनके श्रद्धा में भी है कि ना छह ही द्रव्य है, पर जानते कैसा है, परोक्ष। ये बात समझ में, अगर हम कहेंगे कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों एक जैसा ही है तो वैसा नहीं, ये क्षयोपशम है और वो क्षायिक है।
अब देखो अंतिम लाइन 15 पृष्ठ पर, नहीं ऊपर पादा दो, वा पादा दो उसमें इंक्लूड है, इतनी बात उसमें गर्भित है। सोदे से बनने वाले प्रकृतियों के भीतर उनका पाद है, कि पादा दो लिखा ना, पाद, पाद का अर्थ होता है उसके, उसमें भीतर है, उसके इंक्लूडेड है, जो कुछ है वो समझ लेना। हम आगे देखेंगे। अभी हमने जो 27 प्रकृतियां गिनी थी ऊपर, उसमें ये आती है, इतना बात है। यश कीर्ति प्रकृति के बारे में अभी कहेंगे, यानी वो स्वोदय से बंधेगी के परोदय से बंधेगी, दोनों से बंधेगी। अयश कीर्ति का उदय होते हुए भी बन सकती है, यश कीर्ति का उदय होते हुए भी बन सकती है। अभी हम गुणस्थानों में इसकी चर्चा करेंगे। तो जहां तक अयश कीर्ति का उदय हो सकता है, वहां तो स्वोदय से भी बंधेगी परोदय से भी बंधेगी। जिस गुणस्थान के आगे अयश कीर्ति का उदय ही नहीं है, वो कहां तक रुक जाता है? उदय चौथे में। अयश कीर्ति का उदय चौथे तक ही है, यश कीर्ति का तो चौदहवे तक है। हाँ, वही मैं बस देखो, अभी यश कीर्ति का स्व उदय ने परे उदय क्या होता है? यश कीर्ति बन रही है, उसके लिए स्वोदय ने यश कीर्ति का उदय चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्वोदय से बन रही है। यदि किसी का अयश कीर्ति का उदय हो रहा है और वो बांध रहा है यश कीर्ति, तो हम कहेंगे यश कीर्ति का बंध परोदय से हो रहा है। ये बात समझ में आई? हाँ, बन सकते हैं। हम देखते हैं कोई ऐसा है, अच्छा भी काम कर रहा है और उसको पूर्व कर्मों के उदय चल रहे हैं उसके अयश कीर्ति का, तो उसको भला काम करते हुए भी यश नहीं, उसका अपयश हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं ना, लौकिक में भी देखते हैं। जैसे हम पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, वहाँ भी यही रूल है ना। पाप के उदय में किसी को पुण्य बन रहा है और पाप के उदय में कोई पाप बांध रहा है, वैसे यहाँ समझना, यश कीर्ति के उदय में कोई यश कीर्ति बांध रहा है और कोई अयश कीर्ति के उदय में यश कीर्ति बांध रहा है, तो बंध किसका हो रहा है? यश कीर्ति का। किसके उदय में? स्वोदय में ने यश कीर्ति के उदय में यश कीर्ति बांध रहा है, और परोदय ने अयश कीर्ति के उदय में यहाँ यश कीर्ति बन रही है। ये तो सामान्य से उसको हम क्या कहेंगे, स्वोदय से भी बनती है परोदय से बनती है। ये स्वोदय से भी और परोदय से, ये कहना कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे तक, क्योंकि चौथे के आगे पांचवे से लेकर चौदहवे तक अयश कीर्ति का उदय ही नहीं रहता। तो वहां यश कीर्ति का बंध हो रहा है, तो वो किसके उदय में हो रहा है? यश कीर्ति के उदय में यश कीर्ति ही बांध रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान तक स्वोदय से भी बंध रही है, परोदय से भी बंध रही है। अभी अयश कीर्ति का बाद में देखो, अयश कीर्ति की बात हम बाद में करेंगे, पहले यश कीर्ति की कर रहे हैं। यश कीर्ति का उदय कहाँ से कहाँ तक है? पहले गुणस्थान से लेकर चौदहवें तक है, तो चौदहवें तक स्वोदय से तो बंध ही सकती है। परोदय से कहाँ बंधेगी? जिसको यश कीर्ति का उदय है, ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान वाले के यश कीर्ति बंधेगी, तो उसको हम कहेंगे स्वोदय से भी बनती है और परोदय से भी बनती है। यानी चौथे गुणस्थान तक स्वोदय से भी बनती है, परोदय से भी बनती है। पांचवें गुणस्थान के बाद यश कीर्ति का बंध स्वोदय में ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ अयश कीर्ति का उदय ही नहीं है, ख्याल है? अब अश्विन भाई, आपका प्रश्न, अयश कीर्ति का बंध तो छठे तक है, अब अयश कीर्ति का बंध स्वोदय से होगा कि परोदय से? तो छठे तक दोनों से होगा। हाँ, ऊपर स्वोदय से हो, ऊपर बंध ही नहीं होगा। ख्याल है अभी आपको? हाँ, यानी वो स्वोदय से भी बंध कहाँ तक? यश कीर्ति का स्वोदय से बंध भी कहाँ तक होगा? चौथे तक, क्योंकि पांचवे और छठे वाले को तो यश कीर्ति का उदय है और बांध रहे अयश कीर्ति, ऐसा कोई परिणाम होगा उसका, क्योंकि बंध तो छठे तक है। ख्याल आते दोनों के डिफरेंस? वैसे यश कीर्ति का बंध कहाँ तक है? दसवें तक है, तो दसवें तक यश कीर्ति का उदय है। चौथे यानी पांचवें से लेकर दसवें गुणस्थान तक यश कीर्ति के उदय में यश कीर्ति बनती है, तो स्वोदय से, अकेले स्वोदय से बन रही। नहीं, उदय तो उनके हो ही नहीं सकता यश कीर्ति का, असाता का हो सकता है, असाता का हो, हाँ असाता अलग है, क्योंकि अयश कीर्ति का उदय चौथे तक ही, पांचवे से आगे अयश कीर्ति का हो। ये कीर्ति होना, नाम होना दुनिया में, उसको यश कीर्ति का उदय कहेंगे। बंद हो सकता है, बंद छठे तक, उदय चौथे तक ही, हाँ। नहीं नहीं, मुनि का नाम खराब होता है, हो सकता है लोगों की मिथ्या मान्यता है, उसमें ऐसी बात नहीं लेना। मुनि का नाम खराब, अभी हनुमान मोक्ष गए, अभी लोगों में कैसा है, उनको पूज भी लगाई और वो क्या क्या किया, क्या उनके अयश कीर्ति का उदय चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन से चल रहा है आप बताओ ना। हाँ उदय में, हाँ उदय ही नहीं है, हाँ ये अभी तो हमारे वर्तमान में मिथ्या मान्यता है।
आपके हिसाब से तीर्थंकरों को यश कीर्ति हम इनके इतना मानते हैं तो उनके लिए वो यश कीर्ति है, और या हम 10 हैं तो 1000 लोग हैं कि जो तीर्थंकर को मान, तो उनका अयश कीर्ति है। भाषित नहीं भाई, वो सारे कर्मों को हटा कर तो मोक्ष गए हैं।
यानी वो उदय कब तक रहेगा, वो है तब तक ही उदय रहेगा ना, बाद में जो कुछ उसके संबंध में लोग जानेंगे कहेंगे वो बात उससे कुछ लेना देना नहीं, उनके यश कीर्ति से वो नहीं हो रहा है।
देखो यश कीर्ति यानी मैं अभी आपको बताता हूँ, एकदम बिल्कुल इन शॉर्ट में मैं बताता हूँ, अभी किसी का नाम लेके बोलना तो अभी खराब लगेगा। हाँ हिटलर का है को, अभी अपने यहाँ बम्बई में एक आदमी ऐसा है कि पूरे मिथ्यात्व का पोषण करता है, और उसके लिए इसके उसके फॉलोअर इतने हैं कि पूछो मत ही। तो ये पुण्य का उदय कहो, यश कीर्ति का उदय कहो, बहुत नाम चल रहे हैं, लोग आरती उतार रहे सुबह 5:30 बजे उसकी, वो यश कीर्ति है। और तुम हम जो है जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते हैं और कोई आगम के विरुद्ध बात बोलते नहीं है, अयश कीर्ति है। 10 आदमी से 11वां आदमी नहीं जानता अपने को, ये यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति का उदाहरण
तो
दिया हूं।
ये तो बहुत स्थूल चर्चा है,
ये उदाहरण
लोग जाने, ज्यादा लोग जाने तो यश कीर्ति ऐसा भी नहीं,
पैसा भी होता है किसी के पास, किसी के पास बहुत प्रयत्न करने के बाद भी धंधे में मार खाता है,
एक इंद्रियों में भी यश कीर्ति का उदय होता है।
नहीं ये तो समझने के लिए,
मैंने बोला ना स्थूल है, और दूसरी बात की बात है,
ये जो है ना बंद की विच्छित्ति जो है ना, वो अभी 9 नंबर का पृष्ठ आपको दिखाया, वो एक बार आप याद कर लो तो ये आगे की बात सब समझ में आएगी।
ये लोगों यश कीर्ति का है नहीं, उनका यश ही रहेगा, अभी भले 4 आदमी जानेंगे उनको, परंतु वो तो उसकी अच्छी बात को ही जानेंगे, यानी उसके यश की चर्चा करेंगे, अयश की नहीं। नहीं वो तो सामान्य से सभी जीवों को होता है ना यश यश कीर्ति, तो एक इंद्रिय से लेकर भी उसका उदय है। हाँ और परंतु मिथ्या दृष्टि में भी यश कीर्ति तो है ना इतने सारे जीवों को, वो अलग बात है। हाँ ये अयश होता ही नहीं उनके। हाँ अभी ये जो उनके संबंध में मिथ्या मान्यता चल रही है वो अपना दोष चल रहा है, अपनी मिथ्या मान्यता, जो जैसे कोई तीर्थंकर किसी को स्त्री बना दिया तो किसी को क्या बना दिया, ये तो अवर्णवाद है, उनके स्वरूप संबंधी भ्रांति है। वो तो मोक्ष जाते तो कुछ रहता ही नहीं ना, तो उसके वो तो कहने में स्थूल समझाएंगे कैसे यश कीर्ति को, तो ये है बात। नहीं नहीं उदय की बात कर रहे हैं, उदय की बात कर रहे हैं। ये तो उस जीवों के परिणाम की बात है, क्योंकि उनके तो कर्म तो उनके पास, अभी उनका यश कीर्ति का उदय होगा तो उनके जो आजू बाजू वाले हैं उनके कुछ अभी जिस पर्याय में है देव में, तो वहाँ उसका कुछ प्रभाव दिखेगा। अभी यहाँ कुछ क्या बातें हम समझाएंगे उनके बारे में। हाँ, तब उनका यश चल रहा था।
देखो ऐसा भी होता है ना, यश अयश दोनों का भी उदय होगा अल्टरनेट, एक एक समय के बाद। अभी मैं कहता हूँ आप बहुत सुखी हो, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया है और घर में पंच पकवान बना है, लेकिन दांत दुखने को चालू हो गया, तो तुम दुखी हो या सुखी हो? दुखी हो या सुखी हो बोलो। ऐसा भाई समय समय में सारा बात ऐसा कंटिन्यू एक दो चार घंटे या दो चार साल दो चार बरस ऐसा चले, ऐसा कुछ नहीं है। हर समय में अलग अलग परिणति हो सकती है, कभी यशस कीर्ति कभी अयशस कीर्ति, उसमें क्या चिंता नहीं करने की।
देखो हम पढ़ेंगे इसको, यश कीर्ति प्रकृति को ये बांधने वाले कौन है उसकी बात पहले करें। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक स्वोदय से भी बांधते हैं और परोदय से भी बांधते, ये तो बात क्लियर हो गई ना। यानी यश कीर्ति बन रही है चौथे गुणस्थान तक, यश कीर्ति के उदय से बन रही है तो हम कहेंगे स्वोदय से बन रही है, और किसी के अयश का उदय है और उसमें बन रही है यश कीर्ति तो हम कहेंगे वो परोदय से बन रही है। क्योंकि इन गुणस्थानों में यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से किसी एक का उदय रहता है। असंयत समय दृष्टि के ऊपर के गुणस्थानवर्ती जीव यानी पांचवे से लेकर कहाँ तक समझना, बांधने वाले दसवें तक है ना, बांधने वाले की बात, उदय तो चौदहवें तक चलेगा। तो गुणस्थानवर्ती जीव स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि संयता संयत से लेकर उपरिम गुणस्थानों में अयश कीर्ति का उदय नहीं रहता। बिल्कुल ये बात सही। उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक के जीव स्वोदय से और परोदय से भी बांधते हैं। देखो नीच गोत्र का उदय की विच्छित्ति पांचवे में होती है, नीच गोत्र कर्म के उदय की विच्छित्ति यानी उदय पांचवे तक रह सकता है। जैसे जो तिर्यंच गति वाले जो जीव है उनके नीच गोत्र का उदय है, पांचवे गुणस्थान वाले को भी वही हो रहेगा। वो क्या नीच गोत्र बदल के उच्च गोत्र नहीं होता है? गुणस्थान में जाता है ऊपर के तो गोत्र नहीं बदलता, निज गोत्र तो निज गोत्र ही रहेगा, वो उसका उदय। तो वहां तक तो यानी निज गोत्र वाले को भी उच्च गोत्र का बंध हो सकता है और उच्च गोत्र का उदय होते हुए भी उच्च गोत्र बन सकता है। तो पांचवे तक स्वोदय से भी बंध होगा और परोदय से भी बंध होगा, क्योंकि यहाँ दोनों गोत्रों का उदय संभव है। ये नारकियों को और तिर्यंचों को नीच गोत्र का उदय है और देव और मनुष्य उच्च गोत्र वाले हैं। मनुष्यों में भी फिर वो नीच उच्च ऐसे दोनों भेद करते हैं, क्योंकि वो म्लेच्छ आदि है वो तो नीच गोत्र वाले कहलाते हैं, उसमें भी वो शूद्र है वो अस्पृश्य है, ऐसे बहुत सारे भेद है। अब ये पांचवे के ऊपर, परंतु इससे ऊपर के जीव स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि वहाँ हाँ छठे और ऊपर के गुणस्थानों में उच्च गोत्र का ही उदय रहता है। कब तक उदय है? चौदहवें तक, परंतु बंद तो होगा दसवें तक, यानी वो स्वोदय में ही बंधेंगे। छठे से लेकर दसवें तक उच्च गोत्र का बंध स्वोदय में होगा, क्योंकि वहां नीच गोत्र का उदय नहीं रहता। इस कारण यश कीर्ति और उच्च गोत्र प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बंधने वाली है यह सिद्ध होता है। ये गुणस्थानों की अपेक्षा कहां तक स्वोदय परोदय? और कहाँ अकेला सो दे, ये उन्होंने बता दिया। अब उक्त 16 प्रकृतियों का बंध क्या सांतर है, क्या निरंतर है और क्या सांतर निरंतर है, इन पृच्छाओं का उत्तर कहते हैं। पहले उन्होंने प्रश्न पूछे थे ना, इन 16 प्रकृतियों का, ये 6 नंबर का सूत्र जो है, नहीं नहीं नहीं, ये 16 के बारे में, हाँ हाँ, 7वां और 8वां प्रश्न मिला बिना 7 पृष्ठ पर, नीचे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। अभी हमने जो देखे थे तो क्या अपने उदय के साथ होता है, क्या पर के उदय के साथ होता है, या अपने और पर दोनों के उदय के साथ, यहाँ तक के प्रश्न के उत्तर हमने देखे। अब कहते क्या सांतर होता है, क्या निरंतर होता है, किसकी बात है, 16 कौन सी है, 5वें नंबर के सूत्र में इसी पृष्ठ पर, 7 पृष्ठ पर देखे थे वे, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इनके संबंध में बात चल रही है। ये 16 प्रकृति यही क्यों ली, 10वें गुणस्थान तक बंधने वाली ये प्रकृतियां, यानी 10वें गुणस्थान में इनके बंध की विच्छित्ति होती है। इन 16 प्रकृतियों के बारे में प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, वो स्वोदय है क्या परोदय है, उसकी बात उन्होंने बता दी। ये 5वें नंबर की सूत्र है, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, जिन 16 के बंधे विच्छित 10वें में होती है वे प्रकृतियां हैं। देखो उक्त 16 है ने 5वें सूत्र वाले, 5वें सूत्र की बात है, अभी हमने जो पेज नंबर 7 देखा था उस पर, मैंने 10वें गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली, बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां, अब ये सांतर किसको कहना, निरंतर किसको कहना, उसकी भी बात आएगी। एक प्रकृति की बात है ना, वो प्रकृति बांधने वाला क्या वो अनादि से बांध रहा है, क्या उसमें कुछ सादी है, क्या ध्रुव है, ये सांतर है क्या निरंतर है, उसकी बात है। एक जीव की अपेक्षा होगा, नाना जीव की अपेक्षा तो निरंतर ही कोई ना कोई तो जीव बांधता ही रहेगा, वो निरंतर मार्गणा सांतर मार्गणा वो बात अलग है, वो हमने अनेक जीवों की अपेक्षा भी देखी थी। अब यहाँ जो बात है, कोई जीव इस प्रकृति को बांधता है तो क्या एक समय बांधकर रुक जाता है, ऐसा कभी होता है क्या, लगातार कुछ समय तक बनता ही रहेगा, मिनिमम अंतर्मुहूर्त तक बंधेगा ही, तो उसको हम कहेंगे वो निरंतर बनता है। कोई ऐसा है कि अनादि से बांध ही रहा है, उसको तो निरंतर कहते हुए भी ध्रुवबंदी कहेंगे। जैसे 5 ज्ञानावरण है, वो कब से बांध रहा है, अनादि से बांध रहा है, कब तक बांधेगा, 10वें गुणस्थान तक बांधेगा, उसमें अंतर कभी पड़ सकता है, हाँ उपशम श्रेणी में 11वें में जाएगा और फिर बाद में आएगा तो अंतर पड़ सकता है, तब तक वो तो उसको अनादि का अनादि ध्रुवबंदी कहेंगे उसको। ये यहाँ चर्चा आएगी, किसको ध्रुवबंदी कहना, किसको निरंतर बंदी कहना, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। पहले तो प्रश्न पूछा है क्या उक्त 16 प्रकृतियों का बंध क्या सांतर है, क्या निरंतर है और क्या सांतर निरंतर है, इन पृच्छाओं का उत्तर कहते हैं। यहाँ इस अर्थ संबंध से पहले सांतर निरंतर और सांतर निरंतर रूप से बंधने वाले प्रकृतियों का बोध कराते हैं। ये 16 प्रकृतियों की बात तो बाद में करेंगे, अब यहाँ लिस्ट बताएंगे कि सांतर वाली प्रकृतियाँ कौन सी है, निरंतर बंधने वाली कौन सी है, सांतर निरंतर वाली कौन सी है, उन 16 की चर्चा तो बाद में करेंगे। वह इस प्रकार है, 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, आयु चार, ये जुगुप्सा के बाद में कॉमा देना, इन चारों आयु, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरुक लघुक, उपघात निर्माण तीर्थंकर और पांच अंतराय, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बनती हैं। यहां उपसंहार गाथा, गाथा पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ख्याल में आएगा। अभी केवल हम ये लिस्ट पढ़ ली है, फिर इसको निरंतर क्यों कहना, क्या कहना, उसकी बात आएगी। हम गाथा पढ़ेंगे अभी। सत्ते ताल दुआओ तिथय आहार आहु चत्तारी, चौवन्नम पयड़ियो बज्जन्ति निरंतरम सौवा। 47 ध्रुव प्रकृतियां, ये ध्रुव प्रकृतियों को भी यहाँ निरंतर कहा है। ये ध्रुव क्यों कहा फिर उनको? ध्रुव इसलिए कहा कि अनादि से बनती चली आ रही है, इसलिए उसको ध्रुव कहा। जैसे पांच ज्ञानावरण है, नव दर्शनावरण है, मिथ्या जब तक उसकी विच्छित्ति नहीं होती है, अपने विच्छित्ति तक निरंतर बनती रहती है, उसको कहते हैं निरंतर, ये ध्रुव बंदी। जैसे नव के नव दर्शनावरण बंधेंगे, हम जागृत हो या निद्रिस्त हो, हमें बंध नव के नव का चल रहा है। कब तक? मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान वालों को ही, ख्याल है ना? सम्य दृष्टि होता है तो तीन वो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, उसका बंध रुकेगा। छह जो दर्शनावरण है उसका बंध निरंतर चलेगा, यानी वो तो छह तो अनादि से बंध रही है, वैसे वो आगे चलकर उसका भी बंध रुकेगा निद्रा प्रचला का, परंतु चार तो बनती रहेगी। कब तक? दसवें के अंत तक। तो उन चार को दसवें तक हम ध्रुवबंदी कहेंगे, छह को आठवें तक ध्रुवबंदी कहेंगे, और ये जो नौ के नौ है उसको हम दूसरे तक ध्रुवबंदी कहेंगे। ज्ञानावरण तो पांचों के बंद है, पांचों का ही उदय है, तो उसको हम ध्रुवबंदी कहेंगे। अनादि से ही बनती चली आ रही है। अंतराय संबंध में भी ऐसा ही है, अंतराय प्रकृतियां निरंतर बनती है और वो भी ध्रुवबंदी है, निरंतर भी है और ध्रुवबंदी भी है। अब निरंतर और ध्रुव का अंतर अभी आगे क्लियर होगा। देखो गाथा करते लिखते 47 ध्रुव प्रकृतियां, ये यहां तो नहीं लिखी है, परंतु 47 में देखिए ज्ञानावरण की पांच है, दर्शनावरण की नौ है, अंतराय की पांच है, 19 तो ये हो गई, बराबर। पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय और नौ दर्शनावरण, 19 ये हो गए। मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये 19 हुई, 38 हो गई ना। तेजस कारमाण 40 हो गई, फिर वर्णादि चार 44 हो गई, अगुरु लघु परघात यहाँ नहीं होता, अगुरु लघु उपघात और निर्माण, ये 47 हो गए। फिर से देखो 19-19 हमने देखे थे ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय की 19 हुई, मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा 19 हुई, तेजस कारमाण वर्णादि चार, अगुरु लघु उपघात और निर्माण, बराबर है ना। हाँ देखो अब ये 47 ध्रुव प्रकृतियां, इनको ध्रुव कहा है और ये निरंतर भी है। तीर्थंकर, अब निरंतर किसको कहना? आगे चलकर कहेंगे कि लगातार मिनिमम अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही, उसको यहां निरंतर कहा है। बंधना चालू होगा तो एक दो समय में नहीं रुकेगी वो, जैसे आयु का अपने बंध देखा, आयु बनती कभी कभी है, परंतु बंधने लगे तो लगातार अंतर्मूर्त तक बंधेगी, उनको निरंतर कहा है। 47 ध्रुव प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, उसके लिए भी यही रूल है, सातवें में बनती है तो सातवें के
वहाँ भी अंतर मुहूर्त तक बंधेगी आहार अंगोपांग आरक्षक। देखो आपका प्रश्न है किसी भी प्रकृति का बंधा अंतर मुहूर्त तक होगा ही, ज्ञानावरण का अंतर मुहूर्त तक ही होता है क्या? अभी मैं बताऊँ आपको कौन सी प्रकृतियाँ एक समय में बन सकती है, एक समय में बनकर रुक सकती है। परघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है, ये जो है ना एक समय में बनकर रुकेगी, एक समय का बंद होगा। उसके लिए आवश्यक नहीं कि अंतर मुहूर्त तक लगातार वो बंद होता रहे। सात प्रकृतियाँ ऐसी, ये सब प्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष वाले में हमने गिनाई थी उसको। और भी आए क्या आगे? देखो ये सब 54 प्रकृतियां निरंतर बंदी है, चार आयु को भी लिया इसमें। देखो 47 तो ध्रुव बंदी जो हमने गिनाई थी वे तीर्थंकर, आहारक द्विक और चार आयु, ये सब 54 प्रकृतियां निरंतर बनती है, इन्हें लगातार बनती है। वो कब से लगातार? अभी तीर्थंकर अनादि से तो नहीं बन रही है, तीर्थंकर प्रकृति को ध्रुव बंदी नहीं कहा है, निरंतर बंदी कहा है। शंका, ध्रुव बंदी प्रकृतियां कौन सी है? क्योंकि 47 खाली लिख दिया, नाम तो नहीं बताए थे। उसका समाधान, देखो चार आयु, तीर्थंकर और आहारक द्विक से रहित, ये पूर्वोक्त प्रकृतियां ही ध्रुव प्रकृतियां हैं, यानी 47 ये है। अभी उसकी नाम नहीं लिखे, वो तो आगे बताएंगे। इन प्रकृतियों की निरूपक गाथाएं ये कौन सी है? ये 15 और 16वीं गाथा में यहां बताई है। देखो ये तो हमें ऐसा लगता है खाली लिस्ट ही लिस्ट हर समय देख रहे हैं, ऐसा ही है, क्या करें। यदि हम 2-3 बार पढ़ भी लेते हैं तो थोड़ा याद भी रह जाता है, और फिर थोड़ा ट्रिक से उसको जानेंगे, क्या करें। उसके लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं है। कभी कभी ये याद हो जाता है तो अच्छा आनंद आता है कि कौन सी है क्या है। हम कहते हैं बंद हृदय में घोटाला हो रहा है बहुत। ऐसा करना, बंद की विच्छित्ति और हृदय की विच्छित्ति याद कर लेना, ये पूरी पुस्तक में आपको इतना मजा आएगा। फिर ऐसा थोड़ा टफ लगेगा, या आपके सामने उसका आपने टेबल भी बनाया था। हाँ टेबल है ना सामने। यानी स्वयं उस उत्तर को ढूंढते हैं या डिराइव करते तो अच्छा लगता है ना। खाली पढ़ लेने में तो क्या, बस वहां से शब्द पढ़ लिए तो उसमें आनंद ऐसा नहीं आएगा। जो आप स्वयं उसको अगर विचार करके सोच के उत्तर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये तो स्टार्टिंग में तो सारे नए शब्द है, ध्रुव बंध क्या है, निरंतर बंध क्या है, उसमें तो थोड़ा ऐसा लगेगा क्या चल रहा है, बहुत टफ जा रहा है ऐसी बात। मगर आगे तो चलकर आसान होने वाला है, हमने हर अध्याय पुस्तक में देखा था। कभी कभी ऐसा टफ टॉपिक भी आता है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें वो इतना ही टफ रहे। जब हम उस शब्दों से परिचित हो जाते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है, तो बाद में आसान हो जाएगा वो। देखो ये गाथाएं पढ़ेंगे हम 15 और 16 एक साथ। ये दशयम हो, दशयम हाँ। नाणंतराय दशयम दंसन नवमिच्छ सोल सकसाया भयकम मधु गुंछावीय तेजा कम्मम च वन्न च दु अगरुरलहु अघादम निमिणम नामम च होन्ति सगदालम बंधो च उव्यप्पो दुवबंदीनं पयडि बंधो। देखो ज्ञानावरण और अंतराय की दश, नौ दर्शनावरण कौमा देना, मिथ्यात्व सोलह कषाय, सोलह ने अनंतानुबंधी के चार, अप्रत्याख्यान चार, प्रत्याख्यानावरण के चार और संज्वलन के चार, ये सोलह कषाय। ये ध्रुवबंधी यानी वो अनादि से बंध रहे हैं। मिथ्यात्व अवस्था में तो इन सबका बंध चल ही रहा है। हम कहें थे अनंतानुबंधी का उदय है, परंतु उदय सबका है, अनंतानुबंधी का भी है, अप्रत्याख्यान का भी है, प्रत्याख्यान का भी, संज्वलन का भी है। उसमें से या तो क्रोध का उदय होगा या लोभ का या माया का मान का कुछ भी, यानी उदय होगा चार क्रोधों का और बंध होगा सोलह का। क्रोध मान माया लोभ, चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोभ, चार चौक सोलह हो गए ना, तो ये सोलह कषाय। भय कर्म जुगुप्सा, यानी भय और जुगुप्सा, ये भय और जुगुप्सा निरंतर यानी ध्रुवबंदी है, वो अनादि से ही बंध रही है। उदय के बारे में ऐसा रूल है, किसी के भय का उदय हो सकता है, किसी के जुगुप्सा का उदय हो सकता है, किसी के दोनों का उदय हो सकता है और किसी के दोनों का भी उदय नहीं ऐसा हो सकता है, फिर भी इनका बंध निरंतर हर समय चल रहा है। ये भय जुगुप्सा ये बहुत डरपोक है, तो डरपोक को भी भय का बंध होगा कि निडर को भी होगा? क्योंकि वो भय जुगुप्सा हासिल रहती, वो तो जाके बंध की विच्छित्ति होगी आठवें में, तब तक बंध निरंतर उसका ध्रुवबंधी है ना, वो तो अनादि से चल रहा है उसका बंध। तो ये भय और जुगुप्सा। तेजस और कारमान शरीर, शरीर नाम कर्म की बात है। वर्णादिचार यानी वर्ण रस गंध स्पर्श, अगुरु लघु उपघात और निर्माण नाम कर्म। देखो पहले ज्ञानावरण लिए, अंतराय लिए, फिर दर्शनावरण लिए, मिथ्यात्व सोलह कुशाय भय जुगुप्सा, ये तो सभी घाती कर्म हो गए। और अभी ये नाम कर्म, बराबर, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा। घाती कर्म में छोड़ी वो कौन सी छोड़ी, अभी कौन सी छोड़ी उसको पहले देखते हैं। देखो ज्ञानावरण सब ली, दर्शनावरण सब ली, अंतराय सब ली, अब बात है मोहनीय की। मोहनीय में से मिथ्यात्व को लिया, सोलह कषाय को लिया, भय जुगुप्सा को लिया, यानी कितने को लिया, 19 को लिया। छोड़ा कितने को, नौ नौ कषाय, भय जुगुप्सा को लिया, हाँ सात को छोड़ा है। तो सात को क्यों छोड़ा, तो ये तो निरंतर बंधने वाली, हमने ध्रुव बंदी देखी है, यानी ये सबकी सब बंध रही है। अब छोड़ा कौन कौन सी है, हास्यरति, शोकरति और तीन वेद। तो उसमें बंधने का नियम ऐसा है, हास्यरति बंधेगी या शोकरति बंधेगी, उसको सप्रतिपक्षी कहते हैं, ऑप्शनल। बंध तो उनका भी होगा ही, परंतु ऑप्शनल बंध होगा, यानी जैसे सबका सब नहीं एट ए टाइम सबका नहीं होगा, हास्यरति और शोकरति चारों नहीं बंधेगी, एक युगल बंधेगा उसमें से। हास्य के साथ हमेशा रति का ही बंध होता है और शोक के साथ अरति का ही बंध होता है, यानी वो दो युगल ऑप्शनल हुए। और तीन वेदों में से एक का, किसी एक का बंध होता है तो वो थी, इसलिए उसको छोड़ा। हाँ ऑप्शनल है ना, वेद का बंध तो हो ही रहा है, परंतु किसी एक वेद का बंध हो रहा है इसलिए वो ऑप्शनल हो गया। यानी ये सात जो प्रकृतियां हैं उसको सप्रतिपक्षी कहते हैं। ये तो घाती में से गई, अब अघाती में अभी नाम में बहुत सारी है ना। अभी जैसे उच्च गोत्र और नीच गोत्र कोई एक बंधेगी तो वो भी सप्रतिपक्ष वाली हो गई। ये 47 है जो हमने ध्रुवबंदी कहा, ये तो बनती है। फिर ये जो हमने तीर्थंकर वगैरह वर्णादि वगैरह देखी थी, आयु वगैरह, वर्णादि तो निरंतर बंदी में लिए, परंतु आयु जो है, तीर्थंकर है, आहारग्विक है वगैरह वगैरह, तो उसको भी अप्रतिपक्ष में डाला। बंधेगी तो बंधेगी, अंतर्मूर्त तक बन सकती है, अकेली बंधेगी, उसको कोई प्रतिपक्षी में यानी ग्रुप में से एक बंधेगी ऐसा नहीं है। नाम कर्म में कैसे, ऐसे गति नाम कर्म, तो चार गति में से कोई एक गति बनेगी, जाति नाम कर्म पांच जाति में से कोई एक जाति बनेगी, शरीर नाम कर्म में तेजस कारमान को लिया है ध्रुव बंदी में, तो रहे कौन से, और आहारक को लिया वो निरंतर बंदी में, वो किसी के बंधेगी। अब रही वैक्रिय वैक्रिय अंगोपांग या औदारिक औदारिक अंगोपांग, तो जैसे हमने गति में ऑप्शन लिया था चार गति में से कोई गति बंधेगी, तो जिसको मनुष्य और तिरंज गति का बंध होगा उसके साथ औदारिक औदारिक अंगोपांग बंधेगी, यानी वहां भी ऑप्शनल है औदारिक औदारिक अंगोपांग बंधेगा या वैक्रिय वैक्रिय अंगोपांग बंधेगा, उसको सप्रतिपक्षी वाले कहते हैं, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी 47 ये ध्रुवबंदी है, 11 वो तीर्थंकर आहारद्विक वगैरह वो 11 होती है, और रिमेनिंग 62 है 51 है वो ये सप्रतिपक्षी वाली है, 62 है मगर उसमें हमने 7 तो मोहनीय की देखी और यशकीर्ति यशकीर्ति और साता या असाता, 7 और 4 11 वो गई, बाकी जो नाम कर्म की 51 प्रकृति है सप्रतिपक्षी वाली, ग्रुप में से कोई एक बंदेगी ऐसी, जैसे गति है जाति है, अभी दो दो शरीर हमने देखे थे, 6 संस्थान में से कोई एक संस्थान, 6 सहनन में से कोई एक सहनन, ऐसे अभी वो उसकी लिस्ट आगे बहुत बड़ी है। हाँ बंध बंध में भी है ना, वो उदय तो ध्रुव है उसका, बंधने में भी फर्क पड़ सकता है, प्रतिपक्ष में लिया उसको, अभी वो आएगी क्रम से बातें, अभी तो हमने शुरू किया है ना, अभी तो ध्रुव क्या है निरंतर क्या है इसकी चर्चा चल रही है। देखो फिर ये निरूपक गाथा में देखी उसका अर्थ चल रहा था, देखो फिर से ज्ञानावरण और अंतराय की दश, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व 16 कषाय, भय कर्म जुगुप्सा। अब ये जो बाकी जो है ना ये तो घाती में से हुई, अब अघाती वाली नाम कर्म की है उसमें से, तो तेजस और कारमान शरीर, वर्णाधिक 4, अगुर लघु उपघात और निर्माण नाम कर्म, ये 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, हर समय अनादि से इनका बंध होता चला आता है जब तक इसकी विच्छित्ति न हो जाए, यानी जब तक विशिष्ट गुणस्थान में उनके बंध की विच्छित्ति नहीं होती है तब तक अनादि से प्रति समय ये बनती ही रहती है। तो जैसे अभी हमने देखा था ज्ञानावरण बनता ही रहता है, तो हम तो ज्ञानावरण के बंध के कारण कौन से है जब शास्त्र में पढ़ते हैं चलो ये नहीं करेंगे तो हमको ज्ञानावरण नहीं बंधेगा ऐसा सोचते हैं ना लोगों को, तो ऐसा लगता है ना कौन सा बंध में कैसा रोकू उसको, अवॉइड कैसे कर ये तो क्या होता है उसकी जानकारी है, ये कोई बंध हमें इच्छा से उसको कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ उसमें जो ये जो कारण, तो कारण क्यों बताए वहाँ, हमने तो देखा इतनी सारी निरंतर बंधने वाली है, कोई भी परिणाम करो इतनी तो बंधेगी, इसमें से तो छुटकारा नहीं ना, जैसे हमने देखा था देखो ज्ञानावरण अंतराय ये सभी घाती बंध रही है, थोड़े अभी हास्यरति वगैरह का डिफरेंस होगा बस उतना ही, तो ये सभी बंध रही है, पुण्य करो या पाप करो, हाँ तो अनुभाग कहीं तो छुटकारा चाहते ना अनुभाग की तीव्रता में कम ज्यादा होगा जरूर होगा, परंतु हम ये बंध कौन सा करूँ या न करूँ इसकी क्यों सोचते हैं ये बंद होता है ऐसा जानकर अपने स्वरूप का हम चिंतन मनन करेंगे, उसी में एकाग्र हो जाए, और ये हमें कुछ यानी अपना नफा नुकसान करने वाले नहीं है, बिल्कुल उससे भिन्नता पहचानेंगे तो उसका बंध अपने आप रुकेगा। हम तो बंद होता है जानकर अरे कौन सा बंध कैसा कम करो ऐसा उसके बारे में सोचते हैं लोग, तो ऐसे ही पूछते हैं ये कर्मों को पहले कम करना चाहिए, ये किसी किसी ग्रुप में ऐसे बहुत भ्रांति चलती है। हम गए थे ना वहाँ अमेरिका में गए थे वहाँ तो अरे पहले कर्मों को कैसा कम करना वो तो सिखाओ बाद में ये बाकी सारे मोक्ष की बात तो बाद में ही करेंगे हाँ देखो इनका प्रकृति बंध ये ध्रुवबंदी कितनी 47 प्रकृतियां, इनका प्रकृति बंध देखो, चार प्रकार के बंध देखे थे हमने, कौन कौन से याद है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंदर, अनुभाग बंदर। तो इनका प्रकृति बंध सादि अनादि ध्रुव एवं अध्रुव रूप से चार प्रकार का होता है। सादि बंध है ना, मिटा है और फिर शुरू हुआ, ऐसा कब होगा, जब अपनी विच्छित्ति के ऊपर के गुणस्थान में चला गया और बाद में फिर नीचे आए। जैसे हम 11वें की बात करेंगे, 11वें में इनका बंध नहीं हो रहा था और फिर होने लगा 10वें में आने पर, तो उसको कहेंगे हम सादि। अब अन्य भी बातें, जैसे मिथ्यात्व की बात करेंगे, मिथ्यात्व का सादि बंध कब कहेंगे, अनादि से तो मिथ्यात्व तो बनता चला रहा था, सम्यक तो प्राप्त होने पर उसका बंध रुक गया था, दोबारा मिथ्यात्व में आता है तो मिथ्यात्व का बंध फिर शुरू होता है, तो उसको हम कहेंगे सादि बंध। यह है तो ध्रुवबंदी, कब तक, अपनी विच्छित्ति होने तक, फिर भी ऊपर के गुणस्थान में फिर उस गुणस्थान में आता है तो उसका बंध फिर शुरू होता है, उसको कहते हैं सादि बंध। अनादि बंध है ना, विच्छित्ति नहीं हुई है तब तक अनादि से हर समय चल रहा है, उसको कहेंगे अनादि बंध। ध्रुव एवं अध्रुव रूप से चार प्रकार का होता है, वो ध्रुव और अध्रुव की भी बात अभी हम पढ़ेंगे तभी समझेंगे अधिक। शंकाकार ने पूछ लिया, देखो निरंतर बंध और ध्रुव बंध में क्या भेद है, वो ध्रुव करना, धुआं हुआ, वा का व कर देना उसको। समाधान, जिस प्रकृति का पद अर्थात स्थान पौ लिखा ना, पदो पद पद, वो पाद कर किया था उन्होंने, यहाँ पवो किया है। जिस प्रकृति का पद अर्थात स्थान जिस किसी भी जीव में अनादि एवं ध्रुव भाव से पाया जाता है वह ध्रुवबंधी प्रकृति है। क्या कहते हैं, जो प्रकृति किसी जीव में अनादि से ही और ध्रुव रूप से पाई जाती है उसका बंध, उसको ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। अभी हमने जो गिनाई थी 47, हम ज्ञानावरण की बात करेंगे, ज्ञानावरण ये कैसी है, ध्रुवबंधी प्रकृति है, अनादि भी है और ध्रुव भी है, अनादि से हो रहा है और निरंतर उसमें हो रहा है उसका बंध। और जिस प्रकृति का पद नियम से सादि एवं अध्रुव, यानी नियम से सादि, वो अनादि से नहीं होता है, सादि यानी स प्लस आदि, आदि है उसको। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध अनादि से है क्या, मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं है, और सम्यक दृष्टियों में भी सबको नहीं होता है, किसी जीव को होता है, तो उसको आदि है, तो उसको सादि कहेंगे। एवं अध्रुव तथा अंतर्मूर्त आदि काल तक, आदि यानी मिनिमम अंतर्मूर्त तो रहेगा ही, आदि में जितना कुछ यथा योग्य काल तक, अंतर्मूर्त आदि काल तक यानी अंतर्मूर्त से लेकर यथा योग्य जिसकी, क्योंकि आयु है तो अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी, ज्यादा लंबे नहीं बंधेगी, एक समय से नहीं है, मिनिमम अंतर्मूर्त है। हाँ, तीर्थंकर भी बंधने का आदि में, आदि यानी स्टार्टिंग पॉइंट अंतर्मूर्त है, एक समय वाला नहीं लिया है यार, एक समय वाले बंधने वाली अन्य प्रकृतियां हैं जो परघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है वगैरह, ये मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही, इसीलिए इसको निरंतर कहा है। देखो अंतर्मूर्त आदि काल तक यानी अंतर्मूर्त से स्टार्टिंग होकर उससे बड़ा काल हो सकता है, अवस्थित रहने वाला, अवस्थित यानी कायम है, चल रहा है बंध, चल रहा है बंध, हो रहा है, उसको कहते हैं अवस्थित रहा है, यानी अंतर्मूर्त काल तक लगातार हो रहा है, या अंतर्मूर्त से अधिक काल तक लगातार जिसका बंध होता है वह निरंतर बंध प्रकृति है। देखो ध्रुव और निरंतर में क्या अंतर बताया, एक तो अनादि से है और ध्रुव है, जैसे ज्ञानावरण है तो उसको हम ध्रुवबंधी प्रकृति कहेंगे, और निरंतर बंधी प्रकृति किसको कहेंगे, 47 तो निरंतर बंधी है ही है अकेले वो, परंतु जो अनादि से नहीं है, जो सादी वाली है, और जो अध्रुव है, और अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही कम से कम लगातार, उसको निरंतर बंधी प्रकृतियां कहा। थोड़ा डिफरेंस है, ध्रुव वाली तो निरंतर बंधी है ही है क्योंकि वो निरंतर ही बंध रही है, परंतु ये जो तीर्थंकर है, आहार द्विक है, आदि प्रकृतियां कैसी है, सादी है, अध्रुव है, क्योंकि ध्रुव रूप से बनती नहीं आ रही है, और मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही बंधेगी, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहा है। देखो, जिस जिस प्रकृति का बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है, वह सांतर बंध प्रकृति है। सांतर बंध है ने विशिष्ट गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति होती है, अंतर पड़ गए ना उसमें, और फिर नीचे के गुणस्थानों में आएगा तो फिर बंध हो जाएगा, तो सांतर बंदी प्रकृति कहते हैं। अब उन्होंने दिया यहाँ देखो, असाता वेदनीय, स्त्री वेद, जैसे असाता वेदनीय का बंध कहाँ तक है, छठे तक है, यानी जो मुनिराज है छठे में तो असाता वेदनीय बन सकता है, सातवें में तो साता वेदनीय ही बंधेगा, हो सकता है छठे में भी साता वेदनीय बन सकता है, परंतु वहाँ पॉसिबिलिटी ना असाता कभी बंद की, तो सातवें में तो फिर अंतर पड़ गया, उसमें असाता मान लेते कोई बांध रहा है, फिर वो सातवें में चला जाता है तो उसमें अंतर पड़ गया, वो सांतर हो गया, जिसमें बीच में गैप पड़ जाता है वो सांतर प्रकृति के। यहाँ लिखा ना, बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है, बंध विच्छित्ति कब होगी, ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तब, और अंतर पड़ा है और फिर दोबारा उस गुणस्थान में आता है तो फिर बंध शुरू हो जाता है। असाता वेदनीय, स्त्री वेद, स्त्री वेद का बंध दूसरे गुणस्थान तक ही है, नपुसक वेद का तो एकमात्र पहले गुणस्थान में है, और अति शोक ये छठे गुणस्थान तक बंध हो सकता है, नरक गति वो भी पहले गुणस्थान में, चार जाति वो भी पहले गुणस्थान, अधस्तन पांच संस्थान, यानी नीचे के पांच संस्थान की बात है, तो सबसे छठे वाला संस्थान मात्र पहले गुणस्थान में बनता है, और बीच वाले चार संस्थान वो दूसरे तक ही बनते हैं, और समचतुरस्र संस्थान आठवें तक बनता है। पांच सहनन, इसके बारे में भी हमने कल देखा था, लास्ट वाला सहनन पहले में ही बनता है, पहले में उसकी विच्छित्ति होती है, बीच वाले चार दूसरे में, और वज्रषभ नारा सहनन चौथे में बंधे की विच्छित्ति। जैसे नरक गति देखा वैसे नरक गति प्राय ज्ञान पूर्वी। आतप और उद्योत, आतप का उद्योत तो, आतप का बंध तो कहाँ पर है, पहले में ही रुक जाता है, और उद्योत का उदय पांचवे तक है, बंद दूसरे तक है। कोई बात नहीं। अप्रशस्त विहायो गति, अभी ये लिस्ट कल ही देखनी पड़ेगी, समय हो चुका, इसको दोबारा लेते हैं शुरू से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो लो। बोलो अश्विन भाई।